أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعمال کے آثار کے بارے میں بات ہو چکی تھی، اور اب لاسٹ سیشن سے ہم نے یہ جو ٹاپک شروع کیا ہے کہ ہمارے اعمال کس طرح اور کن اوقات میں ائمہ علیہ السلام کو پیش کیے جاتے ہیں، اور دو احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئیں. ایک نقطہ یہاں پر میں کہنا بھول گیا لاسٹ سیشن میں، وہ یہ کہ یہ جو اعمال کی جو بات ہو رہی ہے اور جو اعمال پیش کیے جائیں گے ائمہ علیہ السلام کو یا پیش کیے جا رہے ہیں، اس وقت ہم ان اعمال کی ان لوگوں کے اعمال کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو مسلمان ہیں، جو مؤمن ہیں، جو ایمان لائے ہیں، نہ کافروں کے اعمال کے بارے میں. اگرچہ قرآن مجید کے اندر تفصیلاً ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ کافروں کے اعمال کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے، اور اسی طرح مومنین کے اعمال کے بارے میں بھی، لیکن ہمارا جو مین فوکس ہے وہ مسلمان اور مومنین کے اعمال کے بارے میں ہے. تو یہ نقطہ پوائنٹ آؤٹ کرنا مہم تھا، ایسا نہ ہو کہ کوئی کنفیوژن ہو کہ کافروں کی، کیونکہ جو ٹاپک ہم نے ہیڈنگ میں دیا ہوا ہے وہ یہ کہ انسان کے اعمال، اگرچہ انسان کے اعمال ہیں لیکن فوکس ہمارا مومنین اور مسلمانوں کے اعمال کے بارے میں ہے. کیونکہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل جب قیامت میں نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، مسلمانوں کے اعمال، کافروں کے اعمال، تو اصل کیا ہوگی وہاں پر؟ مین چیز کیا دیکھی جائے گی؟ آیا ایمان دیکھا جائے گا اور اس کے ذیل میں عمل کو دیکھا جائے گا، یا صرف عمل؟ آپ دیکھیں بہت سارے نان مسلم ہیں جو بہت اچھے کام انجام دے رہے ہیں، بہت سارے نان مسلم بزنس مین ایسے موجود ہیں جو چیریٹی کا کام انجام دے رہے ہیں. مثلاً ابھی کورونا کے ایام میں کورونا کے لیے کتنی چیریٹیز دی جا رہی ہیں نان مسلمز کی طرف سے. تو آیا ہم یہ کہیں کہ ان کا عمل تو بہت اچھا ہے، تو آیا جب وہ دنیا سے جائیں گے تو کیا ان کو اسی معیار پر بہشت اور جنت میں بھیجا جائے گا یا نہیں؟ ان کا ایمان پہلے دیکھا جائے گا. آپ دیکھیں بہت سارے ایسے نان مسلمز ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جن کے پاس بڑا بڑا پیسہ ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی موت آسان ہے، جن کو موت کے لمحے کوئی سختی محسوس نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، جو ایمان نہیں لائے ہیں، اگر وہ اچھے اعمال انجام دیتے ہیں اس دنیا کے اندر، جیسے چیریٹی کا کام ہے اور اس طرح کے جو کام ہیں، بالآخر ان کو اسی دنیا میں ان کے کام کا اجر دیا جائے گا. ان کو اسی دنیا میں ان کو اجر دیا جائے گا، آخرت میں ان کو اجر نہیں ملے گا. صحیح. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ان کی زندگیاں میں بہت رونق ہے. ان کو بعض ایسے ہیں جن کو بیماریاں نہیں ہوتی ہیں، بعض ایسے نان مسلمز ہیں جن کو موت کے وقت کوئی پرابلم نہیں ہوتی، آسانی سے موت کا لمحہ طے کرتے ہیں. لیکن مسلمان جو کہ ایمان رکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، خدا کے اوپر ایمان رکھتا ہے، خدا کی وحدانیت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کو اچھے اعمال کے نتیجے میں دنیا کے اندر بھی اس کو نتیجہ ملے گا اور آخرت میں بھی نتیجہ ملے گا. بس اصل ایمان ہے، نہ کہ عمل. صحیح. ٹاپک وسیع ہے یہ بھی، لیکن فی الحال خلاصے کے طور پر میں نے سوچا کہ یہ تذکر ہو جائے. اب ہم نے دو حدیثیں ہم نے لاسٹ سیشن میں دیکھی تھیں، اور سب سے پہلی حدیث جو بیان ہوئی تھی وہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث تھی، कि जिसमें इमाम ने फरमाया था कि इंसानों के जो आमाल हैं वो जुमेरात को और साल में एक दफा 15 शाबान के दिन इन आमाल को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली अलैहिस्सलाम के खिदमत में पेश किए जाते हैं। दूसरी हदीस अगर आपको याद हो जो बयान हुई थी, और इस हदीस में यही आयत रावी ने इमाम से सवाल किया था कि ये जो आयत है सूरह तौबा की आयत नंबर 105, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इअमलू फसयरल्लाह अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून, कि इसके जवाब में इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों के बंदगान खुदा के जो आमाल हैं उनको पेश किया जाता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हर सुबह, डेली मॉर्निंग हमारे आमाल जो हैं वो पेश किए जाते हैं। अब वो आमाल चाहे वो अबरा रहा वो फुज्जा रहा, चाहे वो आमाल अच्छे हों चाहे वो आमाल गुनाह के हों बुरे आमाल हों। अब ये दो टाइम्स को आप जहन में रखें। अब तीसरी हदीस पे आते हैं, वो भी हमने इत्तफाकन तीसरी हदीस भी आपके सामने बयान की थी कि जिसमें उम्मत के आमाल को बयान किया गया था, और जिसमें जिस हदीस के अंदर ये बात, मैं ये हदीस दोबारा तकरार करता हूँ चूंकि शायद ये हदीस मुकम्मल बयान नहीं हुई थी। आप देखें ये हदीस में रावी जो है वो इमाम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि सअलतुहु अन अमालिहा ज़ेल उम्मा, मैंने इमाम से इस उम्मत के आमाल के बारे में पूछा। क़ाला मा मिन सबाहिन यम्ज़ी इल्ला वहिया तुअरज़ु अला नबिय्यिल्लाहि अमालुहा ज़ेल उम्मा, हर सुबह नबी अकरम की खिदमत में इस उम्मत के आमाल को पेश किया जाता है। और लास्ट सेशन में हमने ये बात की थी कि उम्मत के आमाल से क्या मुराद है, इज्तिमाई आमाल, सोसाइटी के आमाल, यानी खुदा ने जो आमाल का जो सिस्टम बनाया है वो इंडिविजुअल आमाल के का सिस्टम बनाया और सोसाइटी के आमाल, माशरती आमाल का निज़ाम बनाया है, और ये दोनों आमाल को पेश किया जाएगा नबी अकरम की खिदमत में हर सुबह। और फिर बात हुई थी कि अमर बिल मारूफ व नहीं अज मुनकर को हम इस निज़ाम इज्तिमाई अमाल से नतीजा ले सकते हैं, कि ये कितना एक अहम एलिमेंट है अमर बिल मारूफ व नहीं अज मुनकर, के इंसान दूसरे इंसानों से ला ताल्लुक नहीं रह सकता। ओके इत्तेफाकन वो जो आयत भी है कि जिसके अंदर, अब वो आयत मैं यहाँ पर मैंने नहीं लिखी है लेकिन आयत के अंदर ये मशहूर आयत है और सबने सुनी हुई है कि जिसमें अलैकुम अनफुसकुम आया है, अलैकुम अनफुसकुम, कि जिसकी जिसको तर्जुमा भी यूं किया जाता है और जो बयान भी इसी तरह किया जाता है कि लोग इंसान जो है अपने नफ्स की ऊपर और अपने नफ्स की निस्बत अपने तस्किया नफ्स के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे, सबसे पहले अपने आप को सुधारे और फिर दूसरों को सुधारे। लेकिन अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह ने इसी आयत के ज़ैल में, यानी जहां पर अलैकुम अनफुसकुम आया है वहां पर ये बयान फरमाते हैं कि अलैकुम अनफुसकुम में जो कुम आया है, कुम आखिर में देखें आप कुम, वहां पर यहाँ पर जम आया है, यानी सिंगुलर नहीं है मुफरद नहीं है बल्कि प्लूरल आया है, जम आया है यहाँ पर, लिहाजा यहाँ पर वो ये इस्तिफादा करते हैं अल्लामा कि यहाँ पर मुराद सिर्फ तस्किया नफ्स से, तस्किया नफ्स एक इंडिविजुअल का मुराद नहीं है बल्कि तस्किया नफ्स से उम्मत मुराद है, उम्मत के भी आमाल यहाँ पर मुराद हैं। अच्छा ये एक हदीस थी, तीसरी हदीस। चौथी हदीस में आप आए देखें जिसमें मोहम्मद इब्ने मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह सवाल करते हैं और ये पूछते हैं कि सअलतुहु अनिल आमाल हल तुअरज़ु अला अलन नबी, वो पूछते हैं कि क्या आमाल को, यानी आमाल को पेश किया जाता है नबी अकरम पर उनकी खिदमत में। कौला इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया माफी ही शक कौन, इसमें कोई शक नहीं है, قلت له أرأيت قول الله تعالى اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. راوی محمد بن مسلم اس آیت کے بارے میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 105 کے بارے میں امام سے پوچھتے ہیں اور یہاں پر امام فرماتے ہیں قال انہم شہود اللہ فی ارضہ. امام فرماتے کہ ائمہ علیہم السلام خداوند متعال کے نمائندے ہیں بلکہ شاہد ہیں امت کے اعمال پر, انسانوں کے اعمال پر اس زمین پر, اس زمین میں. فی ارض انہم یعنی مؤمنون یعنی اہل البیت علیہ السلام انسانوں کے اعمال پر شاہد ہیں خداوند متعال کی طرف سے اس زمین میں. اس کے بعد والی حدیث میں دیکھیں آپ کہ جس میں اب ایک اور وہی وقت کے بارے میں آیا لیکن ایک اور تعبیر کے مطابق. دیکھیں یہاں پر عبداللہ ابن سنان امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں اور امام فرماتے ہیں کہ ان اعمال امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعرض علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی کل خمیس, ہر جمعرات, ہر جمعرات. خوب پہلے بھی ہم نے دیکھا حدیث میں جمعرات آیا تھا لیکن اس حدیث میں آگے دیکھیں کیا امام فرما رہے ہیں. فَيَسْتَحْيِ أَحَدُكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ الْقَبِيحِ فَيَسْتَحْيِ أَحَدُكُمْ. شرم کرو, اگر میں آج کی زبان میں استعمال کروں تو شرم کرو, حیا کرو کہ تم ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم کی خدمت میں تمہارے برے اعمال جائیں, قبیح اعمال پیش کیے جائیں نبی اکرم کی خدمت میں. شرم کرو. فیستحی عہدکم, کتنی شرم کی بات ہوگی اگر ایک مسلمان جو ہے وہ گناہ انجام دے اور اگلے دن جو ہے صبح کے ٹائم پر یا جمعرات کو خدا نخواستہ یہ عمل گناہ کے اعمال پیش کیے جائیں اور توبہ بھی نہ کریں انسان. اگلی حدیث دیکھیں, ہم ابھی آپ کے سامنے تین اور حدیثیں ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے یہ میں سوال اٹھاؤں گا کہ کیوں یہ سارے اوقات الگ الگ مختلف پیش کیے گئے ہیں, احادیث میں بیان کیے گئے ہیں اور اس کا جواب کیا ہے. دیکھیں یہ حدیث کہ سماع جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ قال سمعتہ, میں نے امام سے سنا. یقول, امام نے فرمایا ما لکم تسیئون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نبی اکرم کو رسول خدا کو جو ہے وہ تکلیف پہنچاتے ہو, کیوں نبی اکرم کو تکلیف دیتے ہو, درد دیتے ہو. یہاں پر فرمایا نبی سماع نے فقال له رجل, اب یہاں پر ایک سماع نے کہا کہ یہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, ایک شخص موجود تھا, اس نے کہا امام سے جعلت فدا کا, میں آپ پر قربان ہو جاؤں اے امام. وکیف یسیئون, کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ تکلیف پہنچائیں نبی اکرم کو. آپ دیکھیں نبی اکرم کا دور, نبی اکرم اور امام صادق علیہ السلام کے درمیان کتنے سالوں کا فاصلہ ہے. اب یہ شخص پوچھ رہا ہے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ یہاں اس زمانے میں بیٹھے ہوئے نبی اکرم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. فقال اما تعلمون ان اعمالکم تعرض علیہ فاذا راى فيها معصیه الله ساءه فلا تسوؤوا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسوروه. اما تعلمون, کیا تم نہیں جانتے کہ ان اعمالکم تعرض علیہ, کیا کہ تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ان کی خدمت میں نبی اکرم کی خدمت میں. فاذا راى فيها, اگر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے نامہ اعمال کے اندر کوئی معصیت دیکھی, خدا کی معصیت دیکھی, ساءہ ان کو تکلیف ہوتی ہے, فلا تسوؤوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کو تکلیف مت پہنچاؤ, وسروہ उनको खुश करो। आप देखें इन अहादीस को सुनकर पढ़कर क्या हमारे अंदर शौक पैदा नहीं होता कि हम अच्छे आमाल अंजाम दें और इन आमाल के जरिए अपने अंबिया को, नबी अकरम को खुश करें हम। जब नबी अकरम खुश होंगे हमारे आमाल को देखकर, क्या वो हमारे लिए दुआ नहीं करेंगे? और जब वो हमारे लिए दुआ करेंगे, क्या उनकी दुआएं मुस्तजाब नहीं होंगी? खुदा की बारगाह में यकीनन नबी अकरम की दुआएं इस उम्मत के लिए मुस्तजाब होती हैं। तो क्यों बजाय इसके कि हम नबी अकरम को तकलीफ पहुंचाएं, टाइम जाया कर कर इंस्टाग्राम पे टाइम जाया कर कर ना, आजकल आप देखें इस वक्त एक गुनाह जो आम हो गया है और जिसकी कबाहत बिल्कुल खत्म हो गई है, वो है नामहरम की तरफ निगाह करना। नामहरम की तरफ निगाह करना इस वक्त एक नॉर्मल समझा जाता है, बिल्कुल नॉर्मल। क्यों? क्योंकि हर जगह मौजूद है। आप टीवी खोलें, न्यूज चैनल खोलें, नामहरम मौजूद है। ठीक है, ड्रामे देखें, नामहरमों की हालत देखें, आप किस लिबास में आते हैं। और इसी तरह मोबाइल पर, एडवर्टाइजमेंट्स पे, आप हत्ता PSL, आप क्रिकेट के मैचेस देखें, फुटबॉल के मैचेस देखें, हर जगह ये मनाजिर, कभी मनाजिर मौजूद हैं। सही? तो लिहाजा ऐसा ना हो कि हम, अब यहां पर इंसान क्या करता है, ये शैतान है यहां। अब आप देखें शैतान क्या करता है यहां पर। जब भी इंसान गुनाह अंजाम देता है तो दो हालतें सामने होती हैं। जब भी इंसान गुनाह अंजाम देता है तो इंसान या तौबा करेगा, या, गौर से सुने, या तौबा करेगा पशेमानी के नतीजे में, या क्या करेगा, तौजीह करेगा। तौजीह करेगा यानी एक्सक्यूजेस बनाएगा। सही? अपने गुनाह की तौजीह करेगा कि मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया, मैंने तो बिल्कुल ठीक काम किया है। बस या तौजीह, या तौबा, या तौजीह, तो इंसान यहां बच के रहे। और आज के जमाने में बिलाकर इतने गुनाह बढ़ गए हैं कि तौजीहात ज्यादा हो गई हैं बजाय इसके कि तौबा ज्यादा हो। और इसका नतीजा ये जो हालात है दुनिया के, और जो वायरसेस, और बिलाकर अगली हदीस देखें आप। अगली हदीस में इब्ने अब्दुल रहमान इब्ने कसीर इमाम सादिक अलैहि सलाम से नकल फरमाते हैं कि कुल अमलू, ये जो आयत है दोबारा देखें, सारी सारी अहादीस जो अमाल के पेश किए जाने के हवाले से, वो इसी आयत के ज़ैल में, कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून। रावी ने इमाम से इस आयत के बारे में पूछा, इमाम ने फरमाया कि मोमिनून यानी हुमुल अइम्मा, यानी अहलुल बैत, मासूमीन अलैहिम सलाम, हुमुल अइम्मा, यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेकर बाद तक जितने भी इमाम हैं वो मुराद है मोमिनून, अल मोमिनून से। के अब देखें, हुमुल अइम्मतु तुअरज़ु अलैहिम, कि उन अइम्मा पर यानी हम पर पेश किए जाते हैं ये आमाल। आमालुल इबाद, बंदगान के आमाल, कुल यौमिन इला यौमिल कियामा। अब आप देखें ये टाइम अलग है। अब आप देखें कुल यौमिन, पूरा दिन, यानी पूरा दिन बंदगाने खुदा के आमाल पेश किए जाते हैं। कब तक? इला यौमिल कियामा। पहले था जुमेरात, पहले क्या था, हर सुबह। सही? साल में एक दफा यानी नीमा शाबान। लेकिन अब क्या कह रहे हैं इमाम यहां पर, इस रिवायत की ताबीर देखें, कुल यौमिन इला यौमिल कियामा, यानी लम्हा ब लम्हा पेश किए जा रहे हैं ये आमाल इस उम्मत के, हम इंसानों के। अब आखिरी हदीस देखें, अहादीस बहुत सारी हैं, बहुत सारी अहादीस हैं, टोटल 7 अहादीस मैंने इस वक्त आपके लिए इस मौजू के बारे में सिलेक्शन की है। अलबत्ता जो लास्ट सेशन होगा हमारा, यानी इसके बाद जो सेशन होगा, उसमें अहादीसें पेश की जाएंगी, लेकिन कुछ और इसी मौजू के अंदर, लेकिन एक सब टॉपिक होगा। ओके, अब इस हदीस में देखें कि रावी फरमाते हैं कि मैंने इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से कहा इस आयत के बारे में, कि इअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून। इमाम ने फरमाया, देखें, कौला मा मिन मोमिनिन कोई ऐसा मोमिन नहीं है, यमूतु वला काफिरुन, कोई ऐसा मोमिन नहीं है, कोई ऐसा काफिर नहीं है जो जिसकी मौत होगी, लेकिन क्या होगा, फयूज़ऊ फी कब्रिही, और उसको कब्र में लिटाया जाएगा, रखा जाएगा, हत्ता यहां तक कि युअरज़ अमलुहु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला अलीयिन अलैहि सलाम। कोई ऐसा मोमिन नहीं है, कोई ऐसा काफिर नहीं कि जिसको जब कब्र में लिटाया जाएगा, रखा जाएगा, कि उसके आमाल को उस लम्हे, उस लहजे पेश किया जाएगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीर अल मोमिनीन अलैहि सलाम की खिदमत में, मौत के लम्हे, कब्र में लिटाने के वक्त। अब जितनी भी और जो और भी रिवायतें हैं, मैं आपके सामने यहाँ पर मैंने नहीं ला पाऊंगा, उनमें मसलन आया है हर सुबह शाम, हर पीर और जुमेरात, मंडे एंड थर्सडे, इसी तरह जुमेरात, इसी तरह जुमेरात की शाम, मौत के लहजे। अब देखिए सारे टाइम्स हैं, मैं दोबारा इसको गिनता हूं, आप देखें गौर से, लम्हा ब लम्हा इंसानों के आमाल पेश किए जा रहे हैं, दो सुबह शाम, तीन हर सुबह, चार हर सुबह शाम, पांच पीर और जुमेरात, छह जुमेरात, सात जुमेरात की शाम, और आठ मौत के लम्हे। ये आठ टाइम्स अक्सर रिवायतों में यही टाइम्स आए हैं, यही औकात कि जिनमें हमारे आमाल पेश किए जाते हैं। अब सवाल, क्यों क्यों रिवायतों की ताबीरात मुख्तलिफ हैं, क्यों मुख्तलिफ औकात, मुख्तलिफ टाइम्स बयान किए गए हैं? इसको समझाने के लिए, इसका जवाब देने के लिए मैं आपके सामने ये आयत रखूंगा, सूरह हज की आयत नंबर 5। अलबत्ता नहीं, सूरह मोमिनून, सूरह हज में भी वही टॉपिक आया, लेकिन सूरह मोमिनून में इसको हम बेहतर मुलाहिजा कर सकते हैं। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 14-14 कि जिसके अंदर खुदावंद मुताल ने इंसान की खिलकत के बारे में, इंसान की खिलकत के जो फिजिकल मराहल, फिजिकल जो खिलकत है उसके मराहल बयान किए इस आयत के अंदर, के अब इस प्रेजेंटेशन में देखें कि खुदा ने यहां पर सबसे पहले बयान ये किया है कि सबसे पहले इंसान का, जाहिर सी बात है, रहीम मादर में सबसे पहला मरहला कौन सा है, नुतफे का मरहला। जब इंसान का ये नुतफे का मरहला तय पाता है, उसके बाद आलाका का मरहला है, उसके बाद मुवगा का मरहला है, उसके बाद इज़ाम हड्डियां और लहम यानी गोश्त, और फिर वनफख्तु फीही मिन रूही, इन तमाम मराहिल तय करने के बाद क्या होता है, इंसान की रूह को जो है वो फूंका जाता है इस फ्रेमवर्क में, इस बॉडी के अंदर, वनफख्तु फीही मिन रूही, जो इस स्पिरिचुअल खिलकत की जो ताबीर है। और यहां पर फिर जिनीन का जो है वो, यानी जिनीन का मरहला, फिर रूह का मरहला, और फिर जो एक 9 महीने का टाइम होता है, और फिर इंसान वजूद में आता है, उसकी विलादत होती है। क्या मकसद है, क्यों मैं आपके सामने ये मराहिल लाया हूं, नुतफे से लेकर अलाका, अलाका से मुजवा, मुजवा से इजाम, इजाम से लहम। दर हकीकत यहां पर जो बात की जा रही है वो ये कि अगर पहला मरहला आप देखें, पहला मरहला जब दूसरे मरहले में दाखिल होता है, दूसरा मरहला जब तीसरे मरहले में दाखिल होता है, बीच में क्या अंजाम पा रहा है, बीच में क्या हो रहा है, यहां पर इन द मिडिल, वसत में क्या हो रहा है, वसत में ये हो रहा है कि पहला मरहला और दूसरे मरहले के दरमियान तस्बीत का अमल तय पा रहा है। तस्बीत, तस्बीत का मतलब ये कि तस्बीत यानी जड़ पकड़ना, यानी पहला मरहला जब जड़ पकड़ ले, फिर यानी स्टेबलाइज हो जाए, आई थिंक स्टेबलाइज होना, तस्बीत को हम ज्यादा बेहतर स्टेबलाइजेशन का माना कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर, यानी जड़ पकड़ना। दूसरा मरहला जब तीसरे मरहले में आ जाए, तो जो पहले दो मरहले हैं वो पक्के होते जा रहे हैं, सही, ये भी बेहतर तर्जुमा है, वो स्टेबलाइज होते जा रहे हैं। तीसरा मरहला, क्यों स्टेबलाइजेशन जरूरी है? ताकि कोई आरिजा पेश ना है, कोई जईफी पेश ना है पहले मरहले में, खुदा ना खासा अगर यही मराहिल ऐसे ही तय होते जाए बगैर तस्बीत के, तो मुमकिन है बैक्टीरियाज, वायरसेस और दीगर जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो मुमकिन है पहले मरहले में मुश्किल पेश आता है, दूसरे मरहले में आरिजा पेश आता है, और इन दी एंड अगर ये तस्बीर और स्टेबलाइजेशन ना हो और बच्चा यूं ही अपने मराहिल तय करते जाए तय करते जाए, जनीन में तब्दील हो, खुदा ना खासा एबनॉर्मल पैदा ना हो, तो जरूरी है कि पहला मरहला तस्बीत पाए, स्टेबलाइज हो, दूसरा मरहला स्टेबलाइज हो, जब तीसरे मरहले में पहुंचता है स्टेबलाइज हो, और ये स्टेबलाइजेशन और तस्बीत का जो कि जो मराहिल है और आमाल है तस्बीत के, वो तय होना जरूरी है, पक्का होना जरूरी है इन मराहिल को अगले मराहिल में पहुंचने से पहले हो। अच्छा, अब आप देखें, आप फर्ज करें, देखें अगर लहम के मरहले में पहुंच जाए तो जो पहले चार मराहिल हैं वो मजीद पक्के हो गए, वो मजीद जड़ पा चुके हैं, सही। अब इस जिनीन की मौत जो है वो रहम में मादर में मुश्किल है, यानी और आरिजा भी यहां पर पैदा होना मुश्किल, कोई एबनॉर्मेलिटी जो है वो आना मुश्किल है। अब इंसान के जो आमाल है वो इसी तरह हैं, सही, इंसान के जो आमाल हैं वो ऐनन नुतफे की तरह हैं, एज इट इज नुतफे के मराहिल की तरह हैं। कैसे? इस तरह से कि इंसान का जब अमल आगाज होता है, शुरू होता है, मसलन आप फर्ज करें आप चाय पीना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, पानी पी रहे हैं आप, सही है, आपने बिस्मिल्लाह करके खाना खाना शुरू किया है, सही, ये नुतफे का मरहला है, सबसे पहला मरहला अमल का आगाज नुतफे का मरहला है। अगर इंसान अमल साले अंजाम दे रहा है, अब अमल या साले है या गैर साले है, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप हत्ता मामूली के जो आमाल होते हैं जैसे चाय पीना, किसी से फोन पे बात करना, खाना पकाना, ये सब आप अमले साले में तब्दील कर सकते हैं, कोई भी अमल मामूली नहीं है, कोई भी अमल मामूली नहीं है, या अमल साले होगा या गैर साले होगा, मामूली से आमाल को भी आप साले में तब्दील कर सकते हैं, इबादत में तब्दील कर सकते हैं आप। अब इंसान जब अमल साले अंजाम देता है, हम नासाले आमाल और गुनाह के बारे में भी आएंगे, बात करेंगे इसी सेशन में, सही। अब देखिए मुख्तलिफ टाइम्स हैं आइमा को पेश करने के, इसको गौर से सुने, इंशाल्लाह खुदा मुझे भी तौफीक दे के मैं इसको समझा पाऊं, इंशाल्लाह आप भी दुआ करें। आगाज अमल नुतफे का मरहला, ठीक। अब अगर एक तो साले अमल है, अच्छा अमल है, नेक अमल है, अब ये जो अमल अंजाम पा चुके शुरू हो चुका है और अंजाम पाने के मरहले में है, यानी ऑन गोइंग है इस वक्त, अमल खत्म नहीं हुआ है, फौरन ही मासूमीन अलैहिस्सलाम को ये अमल पेश किया जा रहा है, मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ औकात में, ये जो मुख्तलिफ औकात हैं मैंने आपके सामने आठ औकात बयान की, आठ टाइम्स बयान की है, लम्हा ब लम्हा, रोजो शब, हर सुबह शाम, जुमेरात जुमेरात की, ये सब मुख्तलिफ औकात हैं। ये जो मुख्तलिफ औकात हैं ये आप समझे इंसान की उस खिलकत के मुख्तलिफ मराहिल की मानंद है, सही। अब आप देखें इसको, आप ये नहीं, आप इसको यूं नहीं कह सकते कि इसका मतलब तरतीब क्या है, ऑर्डर क्या है, क्या सबसे पहले जो है वो सुबह शाम, फिर उसके बाद जुमेरात, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि अमल लम्हा ब लम्हा पेश किया जा रहा है मासूमी में। लेकिन हो क्या रहा है, अगर मैंने आज, आज मंगल का दिन है मिसाल के तौर पर, मैंने ये अमल अंजाम दिया है, नुतफे का मरहला तय होता है, अमल साले है, और मैंने ये अमल साले बाकी रखा है, वो बाकी रखा क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मंगल है, अगले दिन सुबह एक तो लम्हा बलम्हा पेश किया जा रहा है यही अमल, सही, अगर 6 बजे मैंने अमल अंजाम दिया है तो 6:01 PM को, ठीक ठीक है, ये अमल पेश किया जाए 6:02 पर, 6:03 पर, और करते करते सुबह, हदीस में नहीं था कि हर सुबह को पेश किया जाता है इंसान का अमल। अब ये जो सुबह को मेरा अमल पेश किया गया है मासूम को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक, सुबह के बाद क्या होगा? आप फर्ज करें जुमेरात का वक्त आता है, अगले दिन बुध को सुबह, फिर जुमेरात को सुबह, और फिर जुमेरात की शाम। ये जो मुख्तलिफ मराहिल में, स्टेजेस में, कदम ब कदम आमाल को पेश किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरे अमल की तस्बीत हो रही है, मेरा अमल स्टेबिलाइज हो रहा है। यानी किस तरह? अगर मंगल को मैंने अंजाम दिया है, बुध को नबी अकरम को पेश किया जा रहा है मेरा अमल बुध की सुबह को, और अगर मैंने अमल साले जो अंजाम दिया है, कोई गुनाह अंजाम ना दिया हो मैंने, यानी ऐसा नहीं कि मैंने मसलन तिलावत कुरान की है सही और ये अमल शुरू हुआ खत्म हो गया खलास, ऐसा नहीं कि मुझसे ये जुदा हो गया है, ये अमल बाकी है ता कियामत, मैंने अमल अंजाम दिया है, मुझसे जुदा नहीं होगा ये। जब तक इंसान बाकी है तब तक इंसान का अमल भी बाकी है, जब तक इंसान का अमल बाकी है तब तक ये पेश होता रहेगा। कैसे? अगर मैंने तिलावत कुरान का अमल अंजाम दिया है, अगर इस अमल को अंजाम देने के बाद, इस अमल को अंजाम देने के बाद मैंने कोई ऐसा काम ना किया हो जिससे ये अमल मेरा जाया हो जाए, इसका मतलब यह है कि मेरा अमल जड़ पकड़ रहा है, ठीक, मुहकम होता जा रहा है, स्टेबिलाइज होता जा रहा है मेरे वजूद के अंदर, ना सिर्फ मेरे वजूद के अंदर बल्कि इस आलम हस्ती के अंदर। मैंने कहा था ना, इंसान के आमाल इस पूरे निजाम हस्ती से, निजाम वजूद से इसका ताल्लुक है, पूरे निजाम वजूद से इसका ताल्लुक है। बस मेरा अमल, आपका अमल, इंसान का अमल मुख्तलिफ मराहिल में तस्बीत होता जा रहा है। अब अगर आपने ये जो अमल अंजाम दिया है तिलावत कुरान का, आप ये समझे समझे कि अगले साल तक ये अमल आपने, ठीक है, संभाल के रखा है, कोई एबनॉर्मेलिटी इस पर लाहिक नहीं हुई है सही, और नीमाए शाबान को अगले साल ये अमल पेश किया जा रहा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की खिदमत में, इमाम जमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में, ये हर अमल साले की के नतीजे में इंसान की तौफीकात में इजाफा होता है अगले और दीगर अमाल सालेहा को अंजाम देने के लिए। अब अगर मौत तक यही अमल साले बाकी रहा, ये जो बाकी रहा, मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, क्योंकि एक मौजू है कुरान के अंदर जिसका नाम है हप्त, हप्त अमाल। बाज अवकात इंसान ऐसे अमाल अंजाम देता है, खुदा ना खासा गुना अंजाम देता है, कि जिसके नतीजे में पुराने जो अच्छे अमाल थे वो हप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो मिट जाते हैं सही। अगर मौत तक ये बाकी रहा और मुख्तलिफ मराहिल में पेश किए जाते हैं, ठीक है, मौत के लम्हे तक भी पेश किए जा, मौत के लम्हे तक आपने बाकी रखा है इसको, तो नून अला नूर है, नून अला नूर है इंशाल्लाह। अब ये इंशाल्लाह यहां तक उम्मीद है समझ में आ गई होगी ये बात, अगर नहीं मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसको लिखने की कोशिश करें, इन औकात को आप लिखें इंशाल्लाह, और उम्मीद है इसको दोबारा फिर सुने और फिर उम्मीद है ये मामला हल हो जाएगा आपके लिए। दूसरा पॉइंट यहां पर ये कि क्यों, मतलब एक तो एक वजह मैंने आपको बता दी कि क्यों ये मुख्तलिफ औकात बयान किए गए हैं, दूसरी वजह कि ये औकात और ये टाइम्स मुख्तलिफ बयान किए गए हैं वो ये है कि दर हकीकत इन औकात में जब पेश किया जाता है इंसान का अमल मुख्तलिफ औकात में, दर हकीकत इंसान के आमाल का स्ट्रक्चर बयान किया जा रहा है, इंसान के आमाल का जो स्ट्रक्चर है सही, उसके आसार समेत, उसके इफेक्ट्स एंड आफ्टर इफेक्ट समेत, इस आलम हस्ती में इस स्ट्रक्चर को तस्बीत किया जा रहा है सही। बाज़ों का क्योंकि रिवायात के अंदर है कि इंसान, बस इसकी इसका एक नमूना यह है, इसका नमूना यह है कि बहुत सारे आमाल ऐसे होते हैं जिसका नतीजा ये हवादिस हैं इस दुनिया के अंदर जो हमें देखने को आ रहे हैं। बहुत सारे आमाल ऐसे होते हैं, ये रिवायात के अंदर है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं, रिवायात के अल्फाज हैं। बहुत सारे आमाल ऐसे हैं जिसके नतीजे में मुख्तलिफ इवेंट्स पेश आते हैं, बहुत सारे आमाल ऐसे हैं। ओके, तो ये एक पॉइंट यहां पर ये था कि ये औकात क्यों मुख्तलिफ बयान किए जा रहे हैं, ताकि साख्तारे वजूद स्ट्रक्चर को बयान किया जा रहा है आमाल का। और आप देखें आइम्मा की जबान क्या है, आइम्मा किस जबान में हमसे बात कर रहे हैं, सही, किस जबान में बात कर रहे हैं, अखलाकी जबान में बात कर रहे हैं। मसलन इंसान का जब अमल गुनाह पेश किया जाता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो नबी अकरम नाराज हो जाते हैं, उनको तकलीफ होती है। आप ये देखें, ये अइम्मा की मारिफती और अखलाकी जबान है। ये एक किस्म के अहादीस हैं कि नबी अकरम आपसे खुश होंगे, आपसे नाराज होंगे, उनको तकलीफ पहुंचती है। और एक और जबान क्या है, अखलाकी जबान का एक और टाइप क्या है, काइंड क्या है, किस्म क्या है, वो है सवाब की जबान। सवाब, इंसान मस्जिद बनाता है, मस्जिद के नतीजे में इंसान को एक बहुत बड़ा महल जन्नत में नसीब होता है। उस महल के अंदर रिवायत के इस तरह के अल्फाज आपको बहुत मिलेंगे। उस महल के अंदर फर्ज करें 10 कमरे हैं, हर कमरे के अंदर मसलन 2 खादिम हैं, सही। ये सब जबान देखें, ये क्या, ये कलाम किया है, ये लहन किया है मासूमीन अलैहि सलाम की। ये दर हकीकत मासूमीन अलैहि सलाम इस सवाब के जरिए उस अमल के स्ट्रक्चर को बयान कर रहे हैं, सही। ऐसा स्ट्रक्चर अमल का जो इंसान के वजूद में सबसे पहले इंप्लीमेंट हो रहा है, पैदा हो रहा है, ये स्ट्रक्चर तय पा रहा है, बन रहा है, और इसके असरा इस पूरे आलम हस्ती के अंदर इसके असरात हैं। तो सवाब सिर्फ अट्रैक्शन के लिए नहीं है, बल्कि सवाब इंसान के आमाल के स्ट्रक्चर को बयान कर रहे हैं जो खुदा ने बनाए हैं, सेट ऑफ लॉज और सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स और सेट ऑफ एलिमेंट्स इस निजामे कायनात के अंदर, आलम हस्ती के अंदर। एक उस्ताद से मैंने ये सुना था, मिंबर के उसमें मिंबर के अंदर के फरमा रहे थे, उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम से नकल की थी ये हदीस, के इमाम अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ये बयान, ये नसीहत की थी कि ए हसन, तुम आमाल को सवाब के लिए अंजाम दो। तो क्या ये खुदा ना खासा इमाम को अट्रैक्शन नहीं थी आमाल सालिहा की जाने, और खुदा ना खासा इमाम जो है वो अपने बेटे को अट्रैक्शन के लिए कह रहे हैं कि सवाब के लिए अमल अंजाम दो? नहीं, इमाम तो इंसान कामिल है, इमाम अली अलैहिस्सलाम भी इंसान कामिल है और इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी इंसान कामिल है। क्यों सवाब? क्योंकि ये दर हकीकत जैसा मैंने पहले भी कहा, निजाम आमाल का स्ट्रक्चर है इंसान के। मैंने ये शायद लास्ट सेशन में कहा था कि इंसान के वजूद के अंदर फैलाव आता है, वुसअत आती है, इंसान का वजूद कमाल पाता है इस सवाब के नतीजे में। यानी जब इंसान जन्नत में जाएगा और देखेगा कि मुझे ये इतने बड़े बेहतरीन इनामात मिले हैं, ठीक है, मुझे महल मिला है, मुझे इतनी हूरें मिली हैं और ये सारी चीजें, यानी इंसान को उस वक्त नजर आएगा कि मेरा वजूद कितना कामिल हुआ है। ये सारी चीजें जन्नत के अंदर नेमतें जो हैं, इस बात की निशानदेही करती कि इंसान का वजूद किस कदर उस कमाल को उसने हासिल किया है और किस कदर खुदा की जानिब करीब हुआ है। बस अमल सालेह जब इंसान अंजाम देता है, उसे संभाल के रखे, ऐसा ना हो कि जाया हो जाए। हम ये समझते हैं कि मैंने पिछले साल जो है वो फकीर की मदद की थी, वो तो एक जुदा अमल था, वो याद गई बात गई। नहीं, याद गई बात गई नहीं है, वो अमल आपके साथ बाकी है, उसको संभाल के रखें, सही। अगर इंसान गुनाह अंजाम दे, खुदा ना खासा अमल ना सालिह अंजाम दे, रिवायत के अंदर है कि 7 घंटों तक लिखा नहीं जाएगा। बस इसका मतलब क्यों 7 घंटों तक, यानी उसने अगर तौबा की है इस 7 घंटों के अंदर तो वो अमल नहीं लिखा जाएगा, मकतूब नहीं होगा वो। सही। अब इसको हम इस निजाम अर्ज या आमाल में देखें, जब पेश किया जाता है आइमा की खिदमत में, अगर इंसान ने गुनाह अंजाम दिया है और उसने जुबरान किया है, निदामत पशीमानी हुई है, उसकी तौबा कर ले, तो नतीजे में ना सिर्फ आइमा अलैहिस्सलाम को पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि ये अमल इंसान के वजूद में स्टेबलाइज नहीं होगा, जड़ नहीं पकड़ेगा। अगर तौबा कर ली तो, तौबा नहीं की और आइमा को पेश किया गया अगले सुबह, तो तस्बीत का एक मरहला तय पा चुका है, जड़ एक मरहला वो जड़ पकड़ चुका है इंसान के वजूद के अंदर। और फिर जैसे जैसे इंसान अगर तौबा ना करे और वो अमल इंसान के वजूद में रह जाए, तो मजीद तस्बीत होता चला जाएगा, मजीद वो मोहकम होता चला जाएगा इंसान के वजूद के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान, उसके जहन से तौबा की बात ही निकल जाएगी, वो भूल ही जाएगा कि मैंने कोई गुनाह अंजाम दिया है, दरहाली के उसके वजूद में वो गुनाह बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये टॉपिक भी, इसका पार्ट वन यानी निजाम आमाल का जो दूसरा टॉपिक है कि किस तरह पेश किया जाता है, इसका पार्ट वन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया है। अगला सेशन जो कि लास्ट सेशन होगा माह रमजान से पहले, वो इसी हवाले से हम एक और कुछ और अहादीस हम देखेंगे कि वो बहुत ही खूबसूरत अहादीस हैं कि किस तरह इंसान, अब ये उसमें डायरेक्टली यही बात है कि आइमा अलैहिस्सलाम किस तरह नाजिर हैं, किस तरह देख रहे हैं हमारे आमाल। सही। इंशाअल्लाह खुदावंद ने मुताल से दुआ है कि खुदाया हमें आमाल सालिहा की तौफीक अदा फरमा इस माह रमजान में, और बल्कि माह शाबान के जो आखिरी औकात चल रहे हैं इसको हम गनीमत जाने, और इन अय्याम के ज़रिए और माह रमज़ान के तवस्सुत से हमें आमाल सालिहा की तौफीक अदा फरमाए, हमारे गुनाहों की मगफिरत फरमाए और हमारी आकिबत बखैर फरमाए। अल्लाहुम्मा अजअल अवाकिब उमूरना खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।